मेरे को भी ठूस करके थोड़ा जबरदस्ती खिला दिया। बोले देख तो कैसा बनाया है, श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न है। अब जब मैं ठीक खाया तब से मेरे को ऐसा हो गया। और इस बात को कौन समझे कौन समझाए, अर्थात उन्होंने आखिर में देखा जो महाप्रभु जी के आदेश हैं, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करी दी, मानस में सेवा करना है, एक मिनट में नहीं छोड़ना है। यदि मानस में सेवा करेंगे उसका फल होगा, शरीर में उसका विचार होता है, मनीमान गंदे की चिंता करते हैं शरीर में विचार हो जाता है। उस दिन मैं रात को बोल रहा था क्लास में कि मन खाता है कि शरीर खाते हैं, मन चलता है कि शरीर चलता है, मन में फुर्ती है तो शरीर भारी नहीं होता, मन में इच्छा नहीं है एक कदम पैर नहीं चलता है, मन में भूख है तो शरीर में भूख नहीं है तभी खा लेता है, और शरीर में भूख है मन में भूख नहीं है तो परोसा हुआ आपको ही पड़ा रहता है, मुंह में जाता नहीं है। बहुत विचार दिया है, इससे मन सूक्ष्म होने के नाते चित्त रूपी दर्पण जैसे शीशा की तरह पड़ता है, मन उससे भी सूक्ष्म है। मन तो वासुदेव का तत्व है ना, वासुदेव का प्रकाश है, इसलिए बताया विषय छालिया कभी शुद्ध हो मन कभी हम नहीं रव श्री वृंदावन, शुद्ध मन होगा वृंदावन का दर्शन करेगा, मन साथी होगा अनुकूल हो जाएगा। इसलिए ये सब विचारों को देखना पड़ेगा। रघुनाथ स्वामी साल तो बहुत रात हो गया, कितना टाइम है चिंता करो उधर कृपा सिंह भाई बच्चे पैतानंग पावन घाट सूख गया नदी सूख गया किंतु हमारा दिल के अंदर का जो बाढ़ है वो नहीं सूखा, हमारा काम का स्रोत गया नहीं किंतु नदी का स्रोत सूख गया, ये हमारा दुर्दशा है। सुनते सुनते क्या होगा और इसके ये बदला आज माकुरी सप्तमी भी है, तो विभिन्न जगह में विभिन्न विचार देखने को मिलता है सुनने को मिलता है, किंतु कुछ कथा ऐसे हैं किंवदंती भी है और शास्त्रीय प्रमाण या वैष्णव के मुखनिष्ठित वाणी सबका परिभाषा अपने अपने साधन सापेक्ष है, जिसको अपने साधन करके अपने हृदय में अनुभव होगा साथ साथ में विश्वास भी होगा है तो वही हमारे लिए उपकारी है। किंतु यदि सुना गया बहुत कुछ शास्त्रों में है और अनुभव योग्य नहीं है, अनुभव कर नहीं पाए, तो बहुत जगह में ऐसा होता है अंधविश्वास की तरह विश्वास भी करना पड़ता है। किंतु यदि सत्य है आराम सतपथ पर चल रहे हैं निश्चित अनुभव होगा, नहीं तो केवल बाद में ये होगा हताश होना है। यहाँ पर बताया आज माकुरी सप्तमी है, ये विचार बहुत तरह की है, किंतु ये मकर संक्रांति चला गया कब 14 जनवरी को, तो अभी यदि कहो वो मकर से लेकर के ये सप्तमी आता है संक्रांति के बाद तो 14 जनवरी को गया और आज हो गया कितना 3 तारीख, 3 दिन बाद सप्तमी आता है संक्रांति के बाद, ये विचार नहीं करते हैं। पूर्णिमा के बाद में विचार करते हैं, अमावस्या के बाद में विचार करते हैं, गौड़ीय संप्रदाय में नियम है पूर्णिमा के से पूर्णिमा विचार, या उत्तर प्रदेश में और जगह में पूर्णिमा से पूर्णिमा, बंगाल के लोग संक्रांति से विचार करते हैं 14 जनवरी से जो मकर संक्रांति गया उससे विचार करते हैं। तो ये आज के दिन में ये माकुरी सप्तमी किस लिए आया, किस लिए बोलते हैं, और आज अद्वित सप्तमी होना चाहिए था, तो यह माकुरी सप्तमी बताते हैं कि सूर्य जब मकर राशि में स्थित हुए हैं, मकर राशि में स्थित होने पर सूर्य क्या होता है, उनका जो प्रभाव है प्रकाशित होते हैं, उससे क्या सप्तमी के विचार करेंगे, नहीं, इसमें अद्विताचार्य गुरु के आविर्भाव के साथ साथ में देखा आज के दिन में जब अद्विताचार्य गुरु आ रहे थे समस्त तिथियां एक साथ में जुग युक्त होकर के उनके अभिवादन किया, कैसे बताते हैं वो कारण से महाविष्णु है, इधर सदाशिव तत्व है, एक साथ में तत्व तो होने से जब प्रभु आ रहे हैं जगत में तब बहुत बारी बारी भीड़ लग गया, मेरा लग गया उनके अभिवादन और उनके पूजा के लिए। आज के दिन में कहाँ पर, उधर कुबेर पंडित और नाभा देवी जी। कुबेर पंडित राज पंडित थे, प्रतिदिन राजभरणा में जाते थे। तो जबकि बच्चा जन्म हुआ तो बताते हैं कि नेत्र कैसे थे, कमल के समान, इतना सुंदर कमल लोचन देखा, लंबे लंबे आँखी आँखें और सुंदर दिव्य ज्योतिमय दिव्य शरीर। ये देख करके पिताजी ने विचार किया, वो तो राजपंडित थे ही, समस्त ग्रह नक्षत्र अतिथियों को जोगयुक्त करके देखा, आज ये मकर राशि जो सूर्य थे वो सूर्य भी आज यहाँ पर आकर सरस्वती वंदना करे स्थित हो गए। सब लोग स्थिर होकर के उनकी पूजा अर्चना किया। उन्होंने इस बच्चे के ऊपर बहुत प्रभावित हुए। अच्छा, अब इसके बाद में धीरे 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 बच्चे करके बड़े होने लगे। कुछ दिनों में इनके घर में मार्गेंद्रपुरी प्रभु आए थे। बचपन में ही मार्गेंद्रपुरी इनके यहाँ आए थे, इनके पिताजी से भी इनका परिचय था। अतिथि देकर के सत्कार किया शांतिपुर में, अपना शांतिपुर भवन में आए। तो इसके बाद में उन्होंने भी बताया, ये बच्चा बाबा इसको देखने से ऐसा लगता है कि भगवान के प्रकाश है, इनके अंदर भगवान प्रकाशित है। इतना कह करके तो माधवेंद्रपुरी प्रथम बार गए। भक्त लोग आते जाते थे, सब लोग सब जगह में सुनाम हो गया। राजघराने में भी इनका बड़ा सुनाम हुआ है। राजा ने भी सुना कि कुबेर पंडित की जो सुपुत्र है कमलाक्ष है, बड़ा विद्वान बड़ा सुंदर, राजा की इच्छा हुई मैं एक दिन दर्शन करूं और उनसे कुछ कैसे विद्वान है, कुछ कैसे पढ़ा लिखा किया है उसका कुछ मैं भी कुछ सुनूं। राजा ने बुलाया, जब राजा ने बुलाया मालूम है कि राजा के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के रास्ता में, राजभवन में प्रवेश करने के पहले ही मंदिर था देवी जी की। सभी लोग जाते थे देवी को प्रणाम करके तब जाकर के राजसभा में बैठते। किंतु जब वो पिताजी के साथ गए तो उन्होंने देवी को प्रणाम नहीं किया, बिना प्रणाम किए ही अंदर प्रवेश कर गए। वो तो राजा को तो पता नहीं, सब पंडितों ने और सब विद्वानों ने देखा इस बात को। वो वहाँ गए, वहाँ पर जाकर के कुछ राजा अपना पंडित जी की राज पंडित है उनकी आराधना सरस्वती की, उनकी प्रार्थना की, फिर इनके लिए भी कुछ त्रुटियाँ प्रार्थना की और इनसे कुछ सुनने के लिए आग्रह किया। उन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर में आज तक जो कि भाष्य नहीं हुआ, जो कीर्तन नहीं हुआ था, भक्ति पर उन्होंने भाषण दिया, विवेचन दिया। ये धर्म क्षेत्र से लेकर के पहले अध्याय में जो कुछ गीता का प्रयोजनीयता है उसके ऊपर में उस समय उन्होंने कीर्तन किया। इसके बाद में आत्मसत्व के ऊपर में कीर्तन किया और इसके बाद में एक एक अध्याय का सार स्वरूप उन्होंने वहाँ पर सुनाया। सारे पंडित स्तब्धीभूत हो गए और राजा स्वयं बहुत पारितोषिक के साथ उनको सम्मानित किया जोतु के साथ। अब पंडित लोगों की चिड़ हो गया, छोटा सा बालक आज सबके ऊपर प्रभाव डाल दी, राजा के ऊपर विशेष कर प्रभाव डाल दी। दूसरे दिन बोले राजा ने फिर बुलाया, कल भी आपके लिए आमंत्रण है और आए आपके समय प्रणाम नहीं किया। इन लोगों ने जाकर राजा से शिकायत की कि मुख से बड़ी बड़ी बातें कोई करने वाला होता है जब तक आचरण नहीं करते तो उनको पंडित नहीं माना जाता है या उनको इस सभा में आसन देने से सबकी अपमान है, इस प्रकार से और सबके लिए ये हानिकारक है। इस प्रकार से राजा को इन लोगों ने शिकायत की। पंडित जी कुबेर पंडित जी ने भी बोला बेटा प्रणाम नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने आग्रह किया आप देवी को प्रणाम क्यों नहीं किया, देवी सौभाग्य है, अध्यक्ष महामाया है, इनकी प्रणाम करना चाहिए। किंतु इन्होंने जवाब नहीं दिया। वहां भी विभिन्न प्रकार शास्त्र की बातें प्रश्नों पंडितों ने याद की, जो कि आज तक योग पर, कर्म पर, ज्ञान पर, अद्वितवाद पर, ब्रह्मवाद पर गीता का भाष्य था। उन लोगों ने उस पर प्रश्न उठाया, गीता में एकमात्र कर्म को ही श्रेष्ठ माना है, सब कुछ बातें उठा, किंतु इन्होंने सबको परास्त कर दिया। उस समय बालक, उस समय कोई उम्र नहीं, 9-10 साल का बालक, किंतु सबको परास्त कर दिया। परास्त ही नहीं, किसी को हृदय में दुख अनुभव नहीं हुआ, सबकी प्रसन्न हो गएंगे, प्रश्नकर्ता और श्रवण करने वाला सब लोग खुश हो गए। किंतु जैसे आप जज रूप चले जाते हैं, मतलब कमलाक्ष, ऐसे उनके हृदय में चीड़ उत्पन्न होता है। केवल शुद्ध सत्व में जब तक जीव प्रतिष्ठित नहीं होते, तब तक, जब तक सत्संग है, कृपा है, तब तक ही इसके बाद में फिर जैसे कि जैसे चारों तरफ माया है, उनकी संग करते हैं, उनके साथ उनका उद्देश्य है, उनको ये हुआ, इनको तो परास्त कर नहीं सकते। अब तो ये एकत्र पूरा मान्यता इनकी होगी, सब लोग इनको सम्मान करेंगे। पंडितों की तो नाक कान कट गया, राजा के सामने उन्हें सबको बड़ा सरल सरल रूप में सामंजस्य करके दिखा दी। तीसरे दिन जब आया, तब इन्होंने बोला, हम इनको तभी पंडित मानेंगे जब ये देवी की सम्मान करेंगे। जब बहुत आग्रह किया, राजा ने अनुरोध किया, कुबेर पंडित जी ने भी उनसे बोला, बेटा प्रणाम करना चाहिए। तो बोले, कुछ बोले नहीं। उस दिन भी सभा में विभिन्न प्रकार चर्चाएं हुई। इन्होंने भागवत को प्रतिपाद्य विषय तैयार की, उन लोगों ने ओंकार को, प्रणव को, भगवत नाम के प्रणाम प्रामाणिकता न देकर के ओंकार को प्रणव माना, और वही चार महाभारत के शंकराचार्य के उसी को ही श्रेष्ठता प्रतिपादन की। इन्होंने समस्त खंडन कर दी। आज तो सबका और भी मुंह उतर गया। किंतु दूसरे ने बोले, आप देवी को प्रणाम क्यों नहीं करती, सम्मान क्यों नहीं करती? तो उन्होंने जवाब दे दी, देवी हमारा सम्मान प्रणाम ग्रहण नहीं कर सकती। जब उनको बताया, किंतु पंडितों ने स्वीकार करने की नहीं। आचरण इन व्यक्ति की बातें सुनने से जहर की तरह काम करता है। जो आचरण करते हैं उनके मुख से एक शब्द सुना जाए, वही अमृत के समान उपकार होता है। इन लोगों ने प्रमाण दिखाया शास्त्र का। इन्होंने दूसरे दिन पंडित जी के साथ आ रहे थे, तो बोले, देवी को प्रणाम करके चलना है। तो ये राष्ट्र लगी हुई थी, ये जैसे सिर झुकाने गए, देवी की मूर्ति इतना जोर से विकराल आवाज की और शब्द होकर फट करके टुकड़ा टुकड़ा होकर के चारों तरफ मंदिर तंदिर और देवी की मूर्ति कहाँ उड़ गया, बिखेर करके टुकड़े टुकड़े होकर के गिर गया। और उस शब्द सब भयभीत हुए। राजा सभासद समेत सामने आए तो पूछा, क्या हुआ गया? तो बोले, ये प्रणाम करना चाहते थे, प्रणाम करने के गए तो देवी का मूर्ति फट गया, उड़ गया है? और इनको किसने कुछ कहा नहीं, ये चुपचाप गए। इधर राजा को सपना देते हैं देवी है, ये मेरे पति है, ये महाविष्णु है, इनको, इनके द्वारा मेरे को प्रणाम करवाएगा, तू इतना बड़ा घमंडी हो गया है? और इन नाम मात्र के पंडित हैं, इन लोगों की बात सुनता है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा प्रभावित हुए, सारे पंडित भयभीत हो गए। किंतु बात यह है, जब तक प्रभु की कृपा किसके हृदय में नहीं होता है, तब तक, और उनके कृपा नहीं होते हैं, तब तक वो अपने विचार से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से उनको समझ नहीं पाता। जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं, महाराज श्री यहाँ मौजूद हैं, या स्वामी जी मौजूद थे, मैं तो अपने आंखों से देखा। उन दिनों में उन लोग की इतना मर्यादा या पूजा पाठ लोग नहीं कर सकते थे, करते नहीं थे, इतना मान्यता देते नहीं थे। जिनके ऊपर उनकी कृपा होता है, उनकी कृपा शक्ति के द्वारा ही उनको समझ सकते हैं। नहीं तो जीव अपने विचार समझ ले तो सब कुछ हो जाए। इन पंडितों ने जानने पर भी समझ नहीं पाए और न कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की। ये तो अचानक हो गया है, बोलते हैं आंधी से आम गिरता है, फकीर की करामती बढ़ता है। एक पेड़ के नीचे आदमी बैठे थे, बोल अभी यदि एक आम गिर गया तो समझूंगा आप पक्के हैं सिद्ध हैं। एक समय आम गिर गया तो ये तूफान से गिर गया, आपके किरामत क्या है? ऐसे ही भाई मंदिर तो कुछ हो गया, किंतु राजा ने समझा, राजा पहले ही प्रभावित थे इनके प्रति, कृपा भी इनका था, राजा प्रभावित हुए और बहुत सम्मान किया और दुगुना करके जो इनको भेज देते अनुकूल उसे दुगुना बढ़ा दिया। राजा बोले इनकी उपजीव बोलते थे, उपजीव देते थे किंतु वो और बढ़ा दिया। शांतिपुर में पूरा जो आज भी देखते हैं कितना बड़ा स्टेट है, आम का बगान है, बहुत बड़ा जमीन है, सब राज घराने से राजा ने राजा की तरफ से वहाँ छोड़ दिया। तो वहाँ बहुत आनंद से चलता। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद हरिदास ठाकुर आए। हरिदास ठाकुर इधर उधर भ्रमण करते करते बेनापुर में आकर के नजदीक में ही फुलिया शांतिपुर, शांतिपुर से करीब करीब 10-15-20 किलोमीटर दूरी पर गंगा किनारा, वहाँ पर एक गुफा निर्जन स्थान गंगा किनारे वहाँ रहने लग गए। वहाँ से आकर जगदगुरु से मिलते और माधुगुरी यहीं करते और करके चले जाते। अब हम लोग सुने हैं कि जहाँ पर हरिदास ठाकुर रहा करते वहाँ पर एक विशुद्ध सर्प रहता था नागराज, और नागराज के भय से कोई दिया दाता नहीं था। क्यों? उनके जहरीली उनके श्वास प्रसाद सब लोग के हृदय को शरीर को जला डालता। गर्मी और बीज फोड़ा जैसे बैल फोड़े फूंसी निकल जाता, डर के मारे जाते नहीं। अर्थात अब हरिदास ठाकुर की कोई तंग करने वाला नहीं। हरिदास ठाकुर हरिनाम कीर्तन करते नाग बड़ा खुश, ओहो आज मैं हो बच गए, प्रभु की नाम मेरे को तो सुनने को मिल रहा है, सर्प जन से मेरे को अब निश्चित रूप उद्धार होने का है। किंतु वो ऐसे विचित्र था, उसके माथा में मनी था। और हरिदास ठाकुर की गुफा के अंदर ही हो दिल में रहा करते। सब भक्तों के प्रार्थना अब जाकर प्रभु के निकट आया कि हम लोग हरिदास ठाकुर ये दर्शन नहीं कर पाते, उनके सानिध्य में कुछ भगवत कथा चर्चा नहीं कर सकते। तो हरिदास ठाकुर अभिराज प्रभु जी ने बस भाई अब नागराज चला जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो। क्यों? सारा विश्व के जो उनकी इच्छा मात्र संचालित संचालन करने वाला जो व्यक्ति है वो इच्छा करे कुछ न हो, बस दूसरे दिन सांप बिल से निकल करके चुपचाप चले जा रहे हैं जंगलों की तरफ। सब लोग देख रहे हैं उनके माथा में मणि चमक रहे हैं, मणि जल रहे हैं। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन आते। कुछ दिनों में जबकि इनका पिताश्री नित्यल्ला में पहुंचे तब श्राद्ध का दिन आया। क्यों? ख्रिस्त जीवन में कोई व्यक्ति हो उनको पितृ श्राद्ध भगवत प्रसाद अर्पण करना चाहिए। अब हम दिन आया, अब समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया क्योंकि ब्राह्मण भोजन करना चाहिए, समाज को भोजन करना चाहिए, सब निमंत्रण दी। तो उसमें सबसे बड़ा श्राद्ध पात्र श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है, उनके सम्मान पूजा करके सबको फिर बाद में दिया जाता है। अब वो आसन किसको मिलेगा, सब पंडितों में होड़ लगी है। ऐसे इनके आगे तो कोई आ नहीं सकते, अब जैसे वो श्रेष्ठ है तो वो किसकी पूजा करते हैं तब तो देखो। अब उन्होंने क्या किया, देर कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर देर में आए, बाहर बैठे हैं, उन्होंने बुला करके ले आए, ला करके श्रेष्ठ आसन दे करके सबसे पहले पत्तल दे दी। अब ब्राह्मण लोग बिगड़ गए, अच्छा एक मुसलमान हरिनाम करने से ही वो शुद्ध हो गया है, जाति कलमश जो दूर जाति कलमश दूर जाता नहीं है। आज ब्राह्मणों का अपमान कोई नहीं कर सकता है। सब लोग उठ गए चल दिए, किंतु हरिदास ठाकुर जी को हरिदास ठाकुर दुखी रहे। अध्यक्ष जी बोले तुम्हें खाइले हो मोर कोटि पितृ तर्पण, बस उन्होंने उनको भोजन कराया, निश्चय इंद्र घर की तुम्हें ब्राह्मण लोग सोचे भाई ये तो पहले भी इनके चमत्कार देखा, आज हम लोग लौट के चले जाए तो हमारा तो अकेला होगा। ये लोग आए, पूछा आपने किस प्रक्रिया से इनको ब्राह्मण माना? तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा शरीर ब्राह्मण है ना, तुम्हारा मन ब्राह्मण है, क्या ब्राह्मण है, क्या तुम ब्राह्मण है? तुम यदि ब्राह्मण होते, तुम्हारे अंदर तम चंडाल ये क्रोध कहाँ से आया? ब्राह्मण तो सरल और सरस निर्मल चित्त वाले तत्व विचारज्ञ और आत्म तत्वज्ञ होना चाहिए। तब उन्होंने बताया था, जन्म ना जायते शूद्र, संस्कार विजय उच्चते, वेद पठे भगवद्विप्र, ब्रह्म जाना की सब ब्राह्मण हो। कौन कृपाण, कौन ब्राह्मण जो वक्षर गार्गी विदिता लोकस्मात की स ब्राह्मण हो। उन्होंने विभिन्न प्रकार से शास्त्रों के उदाहरणों को उठाया, उठाकर देखा दिया, इसमें कौन आत्मतत्वविद है, कौन व्यक्ति के अंदर में आत्मा का ज्ञान है। शरीर यदि ब्राह्मण है तो शरीर छूटने के बाद आत्मा चले जाने के बाद शरीर को जलाया जाता है, तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगना चाहिए? तो लगता नहीं। ब्राह्मण कौन है, कृपण कौन है, शूद्र कौन है, विचार हुआ। पंडित लोग सब परास्त हो गए और नम्र विनय होकर के प्रसाद पाया, और प्रसाद पा करके सब लोग चले गए, आश्चर्यचकित हो गए। अहो ये किंतु चुके और आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्यों शरणागत तो हुए नहीं, दम अहंकार के साथ सुन तो लिया किंतु शरणागत नहीं होने से आत्मज्ञान नहीं आया। क्या हुआ, कलयुग है, क्या करना है, कलयुग है, इसमें तो शूद्रों की पूजा होगी हैं और ब्राह्मणों का अनादर होगा, उल्टा पुल्टा बोलने लग गए। कुछ विवेकी व्यक्ति, सरल व्यक्ति समझ सकर के मान करके उनके अनुगत हो गए अध्यक्ष प्रभु। और क्या हुआ इसके बाद में, अध्यक्ष प्रभु सोचे अब यहाँ नहीं रहना है, मैं अब जाता हूँ कहाँ, नवद्वीप धाम में। उन्होंने पहले सोचा कि मैं तीरथ में निकलू, तीरथ यात्रा में आए, आते आते उनको उनके साथ में भेंट हुआ था विद्यापति का, ऐसे किंवदंती कुछ कुछ जगह में वर्णन आते हैं। मैत्री कवि विद्यापति से अध्यक्ष प्रभु का भेंट हुई थी, उन्होंने वृद्ध अवस्था में उनको देखा, पेड़ के जल में सोए हुए हैं, आँख बुधे हुए हैं, मुदे हुए हैं और पान अश्रु निकल रहा है, कीर्तन कर रहे हैं। अध्यक्ष प्रभु मिले और दोनों के साथ में बहुत भगवत चर्चा हुई। विद्यापति बहुत खुश हो गए, और आज मेरा भगवत दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। भ्रमण करते 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 वहां से मित्रा कवि के साथ मिले, सब चित्त को भ्रमण करके कहाँ आए, वृंदावन में। वृंदावन में आकर के जब वृंदावन में आए, वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा आते ही उनको मधुर गोपाल विग्रह उनको दिए, एक चौबे के घर से उनको उनको दिया, आप इससे बात कीजिए। वृंदावन में जाकर के अद्वितीय वर्ष नामक स्थान पर मदन मोहन मंदिर के पास में, उस समय तो मदन मोहन प्रकाशित नहीं थे, दादा साहब चोटिलिया, वहाँ पर उन्होंने छोटा सा मंदिर जैसा आश्रम जैसा बना के वहाँ मदन गोपाल जी की सेवा प्रकाश किया, वहाँ पर सेवा करते। कुछ दिनों के बाद में उनके लिए आकाशवाणी हुई, भाई अब यहाँ नहीं रहने का, यहाँ पर अब कन्हैया नहीं है, कहाँ है, अब नवद्वीप मायापुर में, वहाँ जाओ। ये वहाँ से चल चल करके सीधा नवद्वीप आ गए, नवद्वीप आकर के वहाँ टोल खोल लिया, कहाँ, जगन्नाथ मिश्र के घर के नजदीक में टोल खोल करके वहाँ विद्या अध्ययन करने लगे, करने लगे। कौन सा, भक्ति शास्त्र, शास्त्र अध्ययन करने लगे। कुछ लोग आने लग गए, धीरे धीरे सुनते थे, धीरे धीरे करके संख्या बढ़ने लगा। और ये प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते, महाप्रभु जी के माता जी सती माता बाराकोना घाट में स्नान करने आते, और ये जाते थे नीचे स्नान करने, ऊपर ऊपर की तरफ सती माता स्नान करने, नीचे की तरफ अध्यक्ष प्रभु स्नान करते। और अध्यक्ष प्रभु को सभी लोग जानते थे ये महाजोगी है। सती माता स्नान करने जाते, अध्यक्ष प्रभु प्रतिदिन तुलसी और फूल समर्पण करते, और ये तुलसी और फूल नीचे की तरफ न जा करके ऊपर की तरफ चढ़ते, कहाँ, सुखी माता के पास जाते, प्रदक्षिणा करके और लौट के आते। इधर सुखी माता का एक करके संतान होता गया, सब खत्म हो गया। एक करके कोई बोलते सात है, कोई बोलते नौ है, नौ कोई नहीं है, किंतु सब खत्म हो गए, एक भी नहीं बचा। एक दिन दुखी होकर के सती माता कहाँ गए उनके निकट, नीलांबर चक्रवर्ती निकट। ये जोगी महाजोगी मैं स्नान करने जाती हूँ, ये उसी समय पहुंचता है, और ये नीचे की फूल तुलसी अर्पण करते हैं, वो आकर के मेरे को प्रदक्षिणा करके चले जाते हैं, मेरे को छीके, और मैं घावड़े जाती हूँ और मेरा सब बच्चे संतान नष्ट हो गए। इनका काम है, ये कुछ करते हैं। नीलांबर चक्रवर्ती बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, घबराओ नहीं। अब जबकि गर्भस्थ हुए ये बड़े सावधानी से डरती डरती रहती, किंतु फिर तुलसी छोड़ा और पत्थर छोड़ा तुलसी जाकर जब उनके शरीर को स्पर्श करके तुलसी जाना ही नहीं चाहते, क्यों उस समय गर्भस्थ विश्व प्रभु आ गए। विश्व प्रभु बलदेव करते हैं, अब विश्व प्रभु आए, कुछ दिनों विश्व प्रभु का जन्म हुआ, बड़े खुश। इसके बाद विश्व प्रभु थोड़ा बड़े हुए, इतने अब जैसे प्रभु उस समय शांतिपुर पहुंच गए दोबारा, और महाप्रभु जिस दिन आविर्भूत हुए उस दिन वहां कीर्तन और हुंकार गर्जन करने लग गए, सब भक्तों को लेकर कीर्तन करने लगे। दूसरे तीसरे दिन वहां से समस्त उपहार लेकर के यहाँ आए, कहा महाप्रभु जी के दर्शन करने। जीत लो बोली है, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब तो मैं जीत गया है, अब कि महाप्रभु आगे बोलते क्या नवा का हुंकार से गर्जन से मेरा सिंहासन हिल गया, मेरे को आना पड़, और उन्होंने हिला दिया सिंहासन, महाप्रभु आगे, और उधर जीत गया चित्कार करने लग गए, मैं जीत गया। कोई नहीं जानता क्यों इसका गर्जन कर रहा है, क्यों आज शांतिपुर नाथ इतना हुंकार गर्जन भर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, क्या बात है किसको पता नहीं, किंतु सभी लोग अनायासी इधर आ रहे हैं मना बुद्धि की तरफ। अब अतिचर्य प्रभु वहां पर टोल खोल दिया, विश्वर प्रभु थोड़ा बड़े हुए और रोज दिन उनके टोल में पढ़ने जाए। अतिचर्य प्रभु बहुत खुश है, आवइए सुंदर मेरे लिए एक मेरा सहायक मिले, ये भी गीता भागवत भारत में रुचि रखने वाला। कुछ दिनों में विश्व प्रभु ही खुद ही उनके यहाँ सब अध्यापन का कार्य करने लगे, बालक है। महाप्रभु अपेक्षा करें महाप्रभु कब आएंगे, महाप्रभु एक दिन सचिव ने भेजा जाओ उनको भैया को बुलाओ, वो गए और भैया का अंचल पकड़ करके देख रहे हैं किसको, और जज्जा को तिरछी नजर से, और उनको पकड़ के चला रहे हैं। अच्छा हम बैठे हैं अपेक्षा करो मैं आ ही रहा हूँ, किंतु बात यह है दोनों भाई एक साथ में नहीं, पहले एक भाई को पार कर दूँ फिर मैं आऊँगा, क्यों जो दोनों साथ में आया और दोनों साथ में संन्यास ली तो सची जगन्नाथ जी नहीं सकते, सची जगन्नाथ किसके सहारे से रहेंगे, पहले एक को पार करूँ फिर मैं पार जाऊँगा, तुम्हारा मनोविष्ट कार्य मैं करूँगा, चिंता मत करो मैं शुरू करूँगा। अब जब वो इशारे से देख रहे हैं और हंस रहे हैं, बड़े खुश हैं, क्यों अब जब वो महाविष्णु हैं, जब सूक्ष्म रूप में कारण दशाई विष्णु में समस्त जीव प्रवेश करते हैं गर्भ दशाई के साथ में महाप्रलय में, तब वो क्या करते हैं स्व इच्छा, तो जब इच्छा करते हैं तो सब जीव फिर दोबारा उद्भुत करते हैं, कुछ जीव सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्ग लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक रहते हैं, और स्थूल शरीर पाकर के इस पृथ्वी लोक में आते हैं, वो आकर के यहाँ पर किससे आते हैं, कुछ आत्मोन्नति हो, भगवत सान्निध्यकार हो, देखते हैं कि जीव तो बिल्कुल यहाँ आकर के स्थूल शरीर पाकर के शरीर के अंदर ऐसे रम गए हैं, बिल्कुल भूगे भूल गए और फिर दुखी होते हैं, फिर सूरज लाख प्रकार झूलने में जाते हैं, फिर भटकते रहते हैं, मैं इन लोगों को कैसे उद्धार करूँ, सोचे मैं खुद जाऊँ जाकर इन लोगों को मैं आदेश उपदेश दूँ स्नेह करूँ, किंतु आकर के देखा जी ऐसे पक्को हो गए ज्ञान जो कर्म और मायावाद अवधि के बाद में इन लोगों को तो उद्धार करना बड़ा कठिन। तब वो चित्कार करने लगे, आप आइए नहीं तो चक्र हाथ में लेकर सबको काट डालूंगा, भक्ति जगत को मैं ध्वंस कर दूंगा। मैं सदाशिव शिव का रूप धारण करके, तमाम रूप धारण करके बिल्कुल सब ध्वंस कर दूंगा, महाप्रलय ला दूंगा जी, और गंगा जल तुलसी लेकर के प्रभु को आराधना करने लगे। तब प्रभु बोलते, अच्छा मैं तो भी आने वाला नहीं था, मैं तो बाद में आता, जब मेरे प्रिय जन मेरे लिए पुकार रहे हैं, इन जीवों के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे, उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक इन जीवों को, जीवों की सत्ता तो है नहीं, बड़ा खुद रहे अनु है, जो जैसे कहता है ऐसे ढल जाता है। ये सरल जीव आश्रम में भी आते भजन करने तो जैसा बहकाते ऐसे बहक जाता है, कभी खराब चीज देखा मन खराब हो गया तो गुरु वैष्णव भूल जाते हैं, कभी अच्छा चीज देखा अच्छा में रम गए, भूल गए भजन और भोजन। जीव अनु होने के नाते, खुद होने के नाते जैसा संभव पड़ता है ऐसे ढल जाता है, अपने आत्मसत्ता को भूल बैठता है। अब इन लोगों को आत्मसत्ता देना है, जब तक नहीं दें किंतु कैसे, मारपीट करके नहीं,